آل انڈیا ریڈیو چندی گڑھ ایف ایم پر دوستو, میں ہوں پلوی جسل اور آپ سن رہے ہیں لیو لائف مور شو. ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہر گروار صبح 10:05 پر, اور یہ شو دوستو آپ تک لایا جاتا ہے فورٹس ہاسپٹل موہالی کے سہیوگ سے. دوستو, کیا آپ جانتے ہیں اسکولیوسس کیا ہے؟ کس طرح سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ ایک ویکتی کو یہ سمسیا ہے؟ اس کے کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں؟ اس کے کیا کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں اگر صحیح سمے پر اس کا علاج نہ کیا جائے؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کے شو میں. اور دوستو, اس وشے پر جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے ایک ایسے وشیشج جنہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے اسپائن سرجری میں ٹریننگ حاصل کی ہے. جی ہاں, ریڑھ کی ہڈی سے جڑی کمپلیکیشنز کو ٹریٹ کرنے میں ان کی خاص مہارت ہے. تو آئیے دوستو, مل کر ہم سواگت کریں ڈاکٹر دیپک جوشی کا. ڈاکٹر جوشی, بہت بہت ابھینندن ہے آپ کا آج کے لیو لائف مور شو میں.
گڈ مارننگ اینڈ نمسکار ڈاکٹر دیپک جوشی.
ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آج کا یہ شو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے اسکولیوسس اویئرنیس کو, تو سب سے پہلے تو آج کے شو میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے شروتاؤں کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسکولیوسس دراصل ہوتا کیا ہے.
اسکولیوسس ایک بہت مس انڈرسٹوڈ پرابلم ہے. اسکولیوسس کا مطلب ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا. ٹیڑھا ہونا سے جو پوسچر ہے وہ ٹیڑھا لگنے لگ جاتا ہے. اس سے ایک شولڈر جیسے ہے آدمی کا اوپر نیچے دکھتا ہے. اس سے آدمی کی جو باڈی شیپ ہے وہ ڈسفگرڈ لگتی ہے. اور ایک بچہ اگر اس کو یہ پرابلم ہو جائے تو اس کی سیلف ریسپیکٹ تھوڑی کم اس کو محسوس ہونے لگتی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ بچوں میں کس طرح کی پرابلمس آتی ہیں اگر انہیں اسکولیوسس ہے, تو ڈاکٹر صاحب کیا اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ارلی ڈیٹیکشن کا مہتو ہے, خاص طور پر اگر ہم بچوں میں اسکولیوسس کی بات کریں؟
اسکولیوسس جب ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں تو موسٹلی بچوں کے ریلیشن میں ہی کر رہے ہیں. اسکولیوسس جو ہے یہ ارلی ڈیٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے, بیکاز اگر یہ ارلی ڈیٹیکٹ نہ ہو تو جیسے جیسے بچوں کی گروتھ ہوتی ہے, ہائٹ گرو کرتی ہے, تو یہ جو کرویچر ہے, جو یہ ٹیڑھا پن ہے, یہ بھی بڑھتا جاتا ہے. اور کیونکہ ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں, بچے ینگ ہوتے ہیں, وہ ٹی شرٹ پہنتے ہیں, کوئی دیکھتا نہیں ہے ان کو, تو یہ جو جب تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا بڑھ چکا ہے, تب وہ اس لیول تک بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اس کے علاج بھی اتنے سرل نہیں رہتے.
تو ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کے علاج بہت سرل نہیں رہتے, کیا کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اسکولیوسس ہو ہی نہ؟ کیا اس کی پریونشن کی جا سکتی ہے؟
اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ پتہ ہو کہ ہوتا کیوں ہے اسکولیوسس. اسکولیوسس موٹے موٹے طور پہ ہم تین طرح میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کنجینیٹل, جس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو جنم سے ہی کچھ ایسی چیزیں چینجز آ چکے ہیں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کہ وہ اس کو وہ یہ چیز ہونی ہی ہے اور دن پر دن بڑھنی ہے. اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اگر جیسے بہت جیسے آپ بچے کا چھوٹے بچے کا مالش کرتے ہو, تو آپ کو اگر ریڑھ کی ہڈی میں تھوڑا سا بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ابھار ہے, تو امیڈیٹلی آپ کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, جو پرابیبلی ان کا ایکس رے کریں گے اور سمجھیں گے. غلطی یہاں پر ہوتی ہے ایسے کیسز میں کہ وہ مالش کرتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مالش کر کے یہ سیدھا ہو جائے گا, اور ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں. پھر آس پاس صلاح لیتے ہیں, ہمیں صلاح ملتی ہے کہ نہیں اس کو ایسا کرو, جیسے بچہ بڑا ہوگا یہ دکھنا بند ہو جائے گا. پر یہ بالکل ہی غلط ہے, کیونکہ اگر ان کی ریڑھ کی ہڈی کی ڈیولپمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, جیسے بچے کی گروتھ سپرٹس آئیں گی یہ چیز بہت فاسٹ بڑھے گی. اور اگر یہ کنجینیٹل اسکولیوسس, جو کبھی کبھی کائفوسس کے ساتھ ہوتا ہے, اگر یہ بہت فاسٹ بڑھے تو اس کے اوپر اسپائنل کارڈ کا دباؤ پڑنے لگ جاتا ہے, اور اس دباؤ کے کارن لیٹ سٹیج میں بچے کی جو اسپائنل کارڈ پہ افیکٹ ہو کے اس کا چلنا پھرنا یا ٹانگوں کی ویکنیس والی پرابلمس آنی شروع ہو سکتی ہیں. دوسرا جو کارن ہوتا ہے وہ 11 سال کے بچوں کے بعد دیکھنا شروع ہوتا ہے, جب بچے اڈولیسنٹ میں یا ٹینیجر ہوتے ہیں. یہ زیادہ کامن پرابلم ہے, یہ لڑکیوں میں زیادہ دکھائی دیتی ہے. اس کا جو کوئی خاص کارن ابھی تک کوئی ڈھونڈ نہیں پایا, اس کو ہم لوگ ایڈیوپیتھک کہتے ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس سمے بچے کھیلتے ہیں, घूमते हैं और विद इन द स्पैन ऑफ 3 to 4 years वो इतनी फास्ट बढ़ जाता है कि जब तक आप रियलाइज करते कुछ है तो हम उसकी कोई भी प्रिवेंटिव टेक्निक जो है वो यूज करने के लायक नहीं रहते। तीसरा कुछ सिंड्रोम्स के साथ होता है, जिसका मतलब ये है कई लोगों को मार्फन सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ये कुछ अनकॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसमें भी होता है, बट अगर किसी बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो उनको भी स्पाइन के विशेषज्ञ को दिखाते रहना चाहिए बिफोर उनकी प्रॉब्लम आगे बढ़ जाए।
आज के लिव लाइफ मोर शो में हमारे साथ हैं हमारे क्षेत्र के जाने माने स्पाइन सर्जन डॉक्टर दीपक जोशी, और डॉक्टर जोशी हमें जानकारी दे रहे हैं स्कोलियोसिस के बारे में। और डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि अगर आपको लगता है कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी में कोई टेढ़ापन है या कोई डिफॉर्मिटी है तो बिना समय गवाए मालिश के चक्कर में या फिर उसको ब्रेस लगाने की बजाय आप एक स्पाइन सर्जन से मिलें, क्योंकि अगर इसका सही इलाज ना किया जाए तो आगे चलकर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डॉक्टर साहब आपने बताया कि जैसे बच्चे के जो लोअर बॉडी है उस पर थोड़ा असर हो सकता है अगर इसको सही ढंग से ट्रीट ना किया जाए, तो क्या इसके अलावा भी कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसका सामना तब किया जा सकता है अगर स्कोलियोसिस सही ढंग से ट्रीट ना किया जाए?
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ की अवेयरनेस जगाना कि अगर जितना छोटा बच्चा है उसमें अगर स्कोलियोसिस मतलब कि रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन दिखता है, कट ऑफ मैं बोलूँगा 11 साल से छोटा बच्चा, अगर 11 साल से छोटे बच्चे को दिखता है तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है बच्चे के लिए, क्योंकि उस समय उसकी ग्रोथ होती है। अगर ये जो रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन चेस्ट के लेवल पर है, छाती के लेवल पर है, तो उसकी छाती की ग्रोथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, उसके कारण उसकी लंग्स की डेवलपमेंट परमानेंटली कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, हार्ट की डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, और उसको हार्ट और लंग की प्रॉब्लम और जो ये डिफेक्ट्स हैं ये परमानेंट हो सकते हैं, जो कि उसकी लॉन्जिविटी को भी कम कर सकता है। और सबसे ज़्यादा गलती भी इसी एज ग्रुप में होती है कि 10 साल से छोटा बच्चा है, हमें लगता है ये जैसे ही बड़ा होगा ये ठीक हो जाएगा, और हम एक इम्पॉर्टेंट टाइम लूज़ कर देते हैं जो कि नॉट ओनली उसकी शेप को ख़राब कर रहा है बट उसकी बेसिक हेल्थ को भी ख़राब कर रहा है। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये होती है कि अगर वो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है तो उसकी ग्रोथ भी नहीं होती है, तो हाइट कम रह जाती है। तीसरा जो है इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है, जब इतना कुबड़ापन या इतनी टेढ़ापन आ जाता है तो जैसे बच्चा बड़ा होता है अवेयर होने लगता है तो उसको थोड़ी सी शर्म आने लग जाती है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है कि मेरा एक कंधा ऊपर है, मेरी चेस्ट बाहर है, तो मैं वो लोगों के सामने जाना, खेलना कूदना, ये धीरे धीरे कम कर देता है।
तो दोस्तों अभी डॉक्टर दीपक जोशी ने हमें बताया कि केवल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स नहीं होते बच्चे पर, सिर्फ उसकी ग्रोथ पर ही उसका इफेक्ट नहीं होता, लेकिन स्कोलियोसिस उसके हार्ट और लंग्स को भी डैमेज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्कोलियोसिस की अर्ली डिटेक्शन हो, इसका पता जल्दी लगना चाहिए ताकि उसका सही इलाज सही विशेषज्ञ द्वारा हो जाए। तो डॉक्टर साहब आप प्लीज़ हमारे लिसनर्स को बताएं कि किस तरह से पेरेंट्स अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे को स्कोलियोसिस है और उसका समय पर इलाज करवाकर इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके।
अर्ली डिटेक्शन ही किसी भी बीमारी का बेस्ट वे होता है उसको ट्रीट करने का। स्कोलियोसिस को अर्ली डिटेक्शन के लिए सबसे पहली चीज़ ये है, जब भी जैसे छोटे बच्चे की आप मालिश करते हो, देखते हो, तो हमेशा नोटिस करो कि कोई भी रीढ़ की हड्डी में कोई ऐसे एक पर्टिकुलर किंक ना हो, कोई उभार ना हो, और वो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो उसको इग्नोर मत करो। कई बार एक साइड की चेस्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ज़्यादा उभार होता है, दूसरी साइड का कम, जैसे बच्चा चल रहा है फिर रहा है, अगर आपको लगता है कि एक शोल्डर की हाइट ऊपर है दूसरे शोल्डर की हाइट नीचे है, या एक तरफ का जो कूला है वो ऊपर है नीचे है, आपको लग रहा है कि एक तरफ की चेस्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो ऐसे केसेस में आप उसको इग्नोर मत करो बल्कि एक स्पेशलिस्ट को दिखाओ जो आपके एक्सरे कराएंगे, टेस्ट करेंगे और पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम अंदर से हो क्यों रही है।
डॉक्टर साहब आज आप हमारे शो में हैं और अगर मैं आपसे ये ना पूछूं कि हमारे जो बच्चे हैं विशेष तौर पर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आजकल बैक प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं, किसी का कंधा दुख रहा है, किसी की गर्दन दुख रही है, किसी की बैक पेन है और वो भी बहुत छोटी उम्र में, तो डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि इतना एडवांटेज हम आपकी प्रेजेंस का ले लें ताकि आप हमारे लिसनर्स को ये अवगत करवा पाएं कि किस तरह के कॉमन बैक प्रॉब्लम्स आजकल बच्चों में देखने में मिल रही हैं और उनके क्या कारण हैं, और पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि बच्चे अपना पॉस्चर सही करें और इन सभी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें।
बच्चों में बैक प्रॉब्लम्स इतनी अनकॉमन नहीं है, इनफैक्ट बच्चों को बहुत, आजकल के बच्चों को तो नेक पेन और बैक पेन काफ़ी आम तौर पे हो रही है। उसके कई कारण हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है पुअर पोस्चर। बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो पढ़ने के टाइम पे टेढ़ा मेढ़ा बैठते हैं, एक सही पोस्चर में नहीं बैठते हैं, डिसिप्लिन जिसको बोल सकते हैं वो नहीं है। फिर दूसरी जो प्रॉब्लम है, एक लंबे टाइम पे टीवी देखते रहना, क्योंकि टीवी देखने के टाइम आपकी जो गर्दन है वो एक ही पोजीशन में लंबे टाइम के लिए रहती है। तीसरी जो कारण है वो है मोबाइल फ़ोन का एक्स्ट्रा यूज़ करना। बच्चे लगे हुए हैं मोबाइल में गर्दन टेढ़ी करके इधर उधर बैड पोस्चर में, तो इससे ये प्रॉब्लम आजकल के बच्चों में थोड़ी ज़्यादा हो रही है। एंड लास्ट जो इम्पॉर्टेंट कारण है वो है डाइट। जो हम बच्चे हैं वो आजकल फास्ट फूड ले रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं है, ना ये आपकी मसल्स के लिए हेल्दी है ना बोन के लिए हेल्दी है। तो ये इम्पॉर्टेंट कारण है बच्चों में आजकल ज़्यादा बैक पेन एंड नेक पेन होने का। पांचवा जो कारण है वो थोड़ा बहुत क्या काफ़ी हद पे हम बोल स्कूल बैग्स पे भी डाल सकते हैं, और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्टडीज़ हुई हैं कि जितना बच्चे का वजन है उससे 15% से ज़्यादा स्कूल बैग का वेट नहीं होना चाहिए। विच मीन्स अगर बच्चे का वजन 50 किलो है तो उसका जो स्कूल बैग है वो लगभग 7 किलो का ही होना चाहिए। स्कूल बैग्स में भी बच्चे भी थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, उनका स्कूल बैग के जो पीछे जो स्ट्रैप होता है वो पतला हो जाता है, एक ही कंधे पे लगा के रखते हैं, उससे शोल्डर पे प्रेशर, शोल्डर इम्पिंजमेंट, ये सब तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो बेस्ट ये है कि स्कूल बैग बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, स्कूल बैग बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसके स्ट्रैप्स वाइड होने चाहिए, दोनों तरफ शोल्डर्स पे लगाना उठना चाहिए, और स्कूल बैग ज़्यादा लटकना नहीं चाहिए। तो ये जो कॉमन रीजंस हैं जिसके कारण बच्चों को बैक पेन नेक पेन होती है। इस उम्र में बैक पेन नेक पेन से बचने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है पोस्चर। सेकंड इज कि अपनी एक्सरसाइजेस करते रहें। बच्चे अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, हेल्दी स्ट्रेचिंग्स नहीं करेंगे, तो इनकी भी बैक की इंजरीज बहुत कॉमनली हो सकती हैं। बट ये सब करने के बावजूद अगर फिर भी बैक पेन हो रहा है, बार बार हो रहा है, उसके कारण लेग पेन भी हो रहा है, सुनपना कहीं पे आ रहा है, या टेढ़ापन आ रहा है, बुखार आ रहा है, रात को ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशंस में आप फिर घर पे मत बैठे रहिए, एक विशेषज्ञ को दिखाइए ताकि वो एक सही कारण ढूंढ के अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको साइन पे ठीक कर सके।
दोस्तों, आज के लिव लाइफ मोर शो में हमारे विशेष अतिथि हैं सीनियर स्पाइन सर्जन डॉक्टर दीपक जोशी, और डॉक्टर साहब ने आज हमें स्कोलियोसिस के बारे में जानकारी दी, यानी कि रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, और डॉक्टर साहब ने हमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए जिसकी सहायता से हम अपने बच्चों की बैक हेल्थ, शोल्डर हेल्थ, नेक हेल्थ का ध्यान रख सके। डॉक्टर जोशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
Thank you everyone, and it was a pleasure talking to you.
Har dard ko mitaye, sare rog dur bhagaye, seva kare mutkalaye, duniya behtar banaye.
अपनी जिंदगी। तो दोस्तों, स्कोलियोसिस पर अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9815687899। जी हाँ, 9815687899। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉगिन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। सो दिस इज पल्लवी जसल नाउ साइनिंग ऑफ, एंड टिल वी मीट अगेन, स्टे ब्लेस्ड एंड लिव लाइफ मोर। दिस प्रोग्राम इज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय डॉक्टर संदीप जसल।